ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பூர்ணம் ஏவ அவசிஷ்யதே. யானி ஜைசே சமஜ்லோ கி दृष्टांत में जैसे चल रहे जो घड़ा है उसको पूर्ण कहा ने, तो वो पूर्णस्य पूर्णम को आधा है, यानी कि वो पूर्ण को निकाल लिया जाए, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए. निकालना यानी कि निकालने का अभिप्राय है अविद्या का तिरस्कार कर दिया जाए, आकार का तिरस्कार कर दिया जाए, घट है ऐसा जो हम व्यवहारिक प्रयोग कर रहे थे उनका तिरस्कार कर दिया जाए, तो फिर क्या बचेगा? मिट्टी ही. पूर्णम एव अवशिष्यते. अतः पूर्णस्य पूर्णम आदाय, यहां पर जो पूर्णस्य है उससे लेना है, जो घट को जैसे पूर्ण कहा था ना, वो घट को हमने पूर्ण कहा था ना, तो वो पूर्ण का पूर्ण को, पूर्णस्य कार्यात्मक जो ब्रह्म दृष्टांत में कार्यात्मक ब्रह्म, उनका जो पूर्णम पूर्णम आदाय, या दृष्टांत में लीजिए घड़े के अंदर जो मृतिका है उनका ग्रहण किया जाए, तो नाम रूप का क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा. तो तिरस्कार होने के बाद बचेगा क्या? तो कहा पूर्णम एव पूर्णत्वम, एक रसत्व जो लक्षण है वो निरंतर, जो प्रज्ञान गण जिसको कहा, एक रस का वो स्वरूप ही केवल अवशिष्यते, यानी कि बचता है और कुछ नहीं रहता. तो नाम और रूप का त्याग करना ही साधना है, इसी के लिए प्रयत्न करना है. ब्रह्म को उत्पन्न नहीं करना है, किंतु नाम रूप उपाधि का परित्याग करना ही ये मंत्र का तात्पर्य है. यदि हमारी नाम और रूपाकार दृष्टि हट जाए, नाम और रूप निकल जाए, तो सर्वत्र हमको एकमात्र ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचेगा. इसको आप सर्प और रज्जु में घटाइए तब भी ये सरलता से इस बात को आप समझ सकते हैं. जैसे सर्प है उसके अंदर जो रज्जु है वो रज्जु ही भरी है. सारे सर्प के अंदर क्या भरा है? सर्प में क्या भरा है? भ्रांति स्थल जो सर्प है, जहां पर आपको सर्प की भ्रांति हो रही, ऐसे स्थल में सर्प दिख रहा है, तो सर्प के अंदर क्या भरा है? रज्जु ही भरी है. सर्प में रज्जु ही भरी है, इसलिए रज्जु को क्या कहेंगे? पूर्ण कहेंगे. रज्जु क्या है? पूर्ण है. अब वो जो पूर्ण है, पूर्ण, अब सर्प भी पूर्ण है और रज्जु भी पूर्ण है, ऐसा लेना होगा. जैसे सर्प रज्जु पूर्ण कहा तो वो अधः पूर्णम, और सर्प को पूर्ण कहेंगे तो इदम पूर्णम. हो गया. अब ये कहेंगे कि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, क्योंकि वो जो सर्प है उसकी प्रतीति कहां हो रही है? रज्जु में. रज्जु नहीं होती तो सर्प की प्रतीति नहीं हो रही है. रज्जु में ही सर्प उत्पन्न होता है, रज्जु नहीं होते तो सर्प की प्रतीति नहीं होती। इसलिए उस पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले, पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले तो क्या अवशिष्ट रहेगा? रज्जु रूपी पूर्ण ही अवशिष्ट रहेगा। सर्प क्या हो जाएगा? निवृत्त हो जाएगा। सर्प रहेगा नहीं, सर्प तो था ही नहीं, वो तो भ्रांति से क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। तो यदि पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले, इदम शब्द से जिसको कहा वो सर्प, उनको पूर्ण कहा, उस पूर्ण सर्प से रज्जु को हटा ले तो सर्प वहां रहेगा ही नहीं, रज्जु रूपी पूर्ण ही अवशिष्ट रह जाएगा। तो इससे तत् और त्वम की एकता बताई गई, और इस मंत्र से ये भी सिद्ध हो गया कि ये जो सारा संसार है वो केवल प्रतीति मात्र है, मिथ्या है, वस्तु सत नहीं है। तो ये जो मंत्र है वो संपूर्ण वेदांत का जो है अर्थ इसमें भरा है, और उनका ये प्रतिनिधि मंत्र है, मानो वेदांत का सिद्धांत इसमें बिंदु रूप से भरा है। इसलिए ये निश्चित हो गया कि ये संसार है वो मिथ्या है। भगवान भाष्यकार इसलिए संसार की सत्ता को मिथ्या कहते हैं, और मिथ्या वो है जो सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, और सद असत उभय भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम भी ये सोचे कि ये जो त्वम है, त्वम यानी जीव भाव, वो जीव भाव भी कब तक है? जब उपाधि है। और उपाधि कौन सी उपाधि लगी हुई है बताओ? अविद्या। इसलिए कारण शरीर है तब तक जो है वो सूक्ष्म शरीर भी रहेगा और ये स्थूल शरीर सारा संसार रहेगा, और कारण शरीर अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी तो सर्वत्र मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का अनुभव हो जाएगा। इसलिए कल बताया था कि ये जो मंत्र है वो ईशावास्य उपनिषद का मंगल पाठ है। ईशावास्य उपनिषद है वो मंत्र भाग की उपनिषद है, और बृहदारण्यक उपनिषद है वो ब्राह्मण भाग की है। तो ईशावास्य उपनिषद का मंत्र जो है, मंत्र रूप जो ईशावास्य उपनिषद का ही व्याख्यान है बृहदारण्यक उपनिषद, मंत्र का व्याख्यान ही ब्राह्मण है। इसलिए वहां पर ये बताया था ना, ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीद तद आत्मानम एव अवेद अहम ब्रह्मास्मि इति, और तस्मात् तत्सर्वम अभवत, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है वो ब्रह्म मैं हूं। इस प्रकार यदि अविद्या की निवृत्ति हो जाए, जैसे कहा ना पूर्णस्य पूर्णम आदाय, आदाय यानी ग्रहण कर लेने पर, यानी आत्म स्वरूप से एक रसत्व को जब हम आपादित कर लेंगे, यानी कि विद्या के द्वारा जब अविद्या का तिरस्कार हो जाएगा, उपाधिक जो संसार है उनकी निवृत्ति हो जाएगी, तो सर्वत्र हमको मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, इस प्रकार का अनुभव हो जाता है। इसलिए तत् और त्वम की एकता इस मंत्र में बताई गई है। जो संपूर्ण उपनिषद का तात्पर्य है। अब इसके बाद जो है एक और मंगल पाठ है, उनका हम विचार करते हैं। सामवेदी उपनिषद का यह मंगल पाठ है। सामवेदी केनोपनिषद और छांदोग्य में भी ये पाया जाता है। सामवेद की तलवकार शाखा की केनोपनिषद है, वो भी मंत्र रूप है और उनका ही व्याख्यान है छांदोग्य उपनिषद। इसलिए अभी जैसे कहा कि मंत्र का व्याख्यान ही ब्राह्मण होता है, तो केनोपनिषद है वो मंत्र भाग की उपनिषद हुई और छांदोग्य है वो ब्राह्मण भाग की। देखो उच्चारण करते हैं, ओम आप्यायन्तु,
ओम आप्यायन्तु,
ममांगानि,
ममांगानि,
वाक्
वाक्
प्राण
प्राण,
चक्षुः
चक्षुः,
श्रोत्रम्
श्रोत्रम्,
अथः
अथः,
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि
सर्वाणि,
सर्वं
सर्वं,
ब्रह्मोपनिषदं
ब्रह्मोपनिषदं,
माहं
ब्रह्म
निराकुर्यां, मामा ब्रह्म निराकरो द निराकरणमस्त्व, निराकरणम् अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। देखिए सर्वत्र ये जो तीन बार शांति 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 का जो उच्चारण करते हैं उसका सर्वत्र अभिप्राय तीन प्रकार की शांति को लेकर के है। तीन ताप की निवृत्ति के लिए है, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, ये तीनों ताप शांत हो। सभी वैदिक शांति पाठ में ये एक ही तात्पर्य से ये कहा गया है। तो देखिए ये जो है इसमें बहुत ही दिव्य भावना की गई है। उपनिषद का अध्ययन करते समय हमारे जो अंग है वो स्थिर हो जाए, बलवान हो जाए, पुष्ट हो जाए, इसलिए ये प्रार्थना की गई है। क्योंकि अध्ययन करते समय शरीर की स्थिरता भी आवश्यक है, कर्मेंद्रियों की ज्ञानेंद्रियों की स्थिरता भी आवश्यक है और प्राण की स्थिरता भी अत्यधिक आवश्यक है। इसलिए यहां पर ये भावना की गई कि मेरे ये जो सब अंग है वो आप्यायन्तु, ब्रह्म का जो ध्यान है उनके अनुकूल मेरे सब अंग हो जाए। आप्यायन्तु किसके लिए कह रहे हैं? ममांगानी आप्यायंतु, मुमुक्षु प्रार्थना कर रहे, इसलिए कहा मम अंगानी आप्यायंतु। उपनिषद पाठ करते समय जो मुमुक्षु बैठे हैं वो आदि में ऐसी भावना करते हैं कि मेरे जो अंग है मम मुमुक्षु, मुमुक्षु के लिए प्रार्थना है, इसलिए मुमुक्षु कहते हैं कि ममांगानी आप्यायंतु। अंगानी, अंगानी यानी जो कर चरण वगैरह है वो सब अंग है, वो आप्यायंतु यानी कि वृद्धिं प्राप्नुवन्तु, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे यानी कि उनकी स्वस्थता बनी रहे। कौन कौन है वो अंग, उसको एक एक से बता रहे। देखो, वाक, प्राण, चक्षुः, श्रोत्रम। तो वाक यहां पर केवल वाणी को ग्रहण किया है, किंतु इसके ऊपर जो भाष्य टीका लिखने वाले आचार्य कहते हैं कि वाणी से पांचों कर्मेंद्रिय ग्रहण कर लेनी है। कर्मेंद्रिया कितनी है?
पांच
है कि नहीं? अब केवल वाणी का ही नाम क्यों लिया, वाक का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि कर्मेंद्रियों में ये जो वागिंद्री है वो प्रधान है, इसलिए प्रधान के ग्रहण करने से जो अप्रधान है उनका भी ग्रहण हो जाता है। इसलिए कहा जो वागिंद्री है वो कर्मेंद्रियाणाम उपलक्षणम। कर्मेंद्रियों का भी वो उपलक्षण है। अभिप्राय यह हुआ कि मेरी जो भी कर्मेंद्रिया है वो आप्यायंतु, ब्रह्म ध्यान के अनुकूल हो जाए, ये वेदाध्ययन के अनुकूल हो जाए। उपनिषद का जो प्रतिपाद्य ब्रह्म है उनको जानने में ये समर्थ हो जाए। समर्थ कब होगी? जब कर्मेंद्रिया इसमें लगेगी, इसी ओर लगे। अभिप्राय यह है कि मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा इसी कार्य में लगू, यानी मेरी वाणी के द्वारा केवल ब्रह्म का ही उच्चारण हो, मेरे हाथ के द्वारा उनका ही ग्रहण हो, वाणी के द्वारा उनका वदन हो, और हाथ के द्वारा केवल उनका ही ग्रहण हो। हाथ क्या करता है? हाथ का कर्म है, कार्य है ग्रहण करना, और वाणी का कार्य है वदन, बोलना, और पैर का कार्य है चलना। तो मेरे पैर के द्वारा मैं उसी ओर चलू, अंधकार से प्रकाश की ओर में चलू। प्रकाश क्या है? वही परम, इसलिए कहेंगे ना तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सदगमय, मृत्युर मां अमृतम गमय। यह अभिप्राय इसमें भरा हुआ, अंधकार से मैं प्रकाश की ओर चलू, असत से मैं सत की ओर चलूं, और मृत्यु से मैं अमृत की ओर चलूं। मेरे पैर के द्वारा मैं चलूं तो मैं यही ब्रह्म की ही प्रदक्षिणा। चलने से क्या होता है? इस तरह की इस कोटि की भावना है तो ब्रह्म की ही प्रदक्षिणा होगी, इसलिए मेरी सब जो कर्मेंद्रिया है वो इसी में ही लगे। और भी जो गुप्त दो कर्मेंद्रिया है उनका भी यही अभिप्राय है कि मेरे द्वारा यदि संतति हो तो वो संतति भी इसीलिए कि मैं इस ब्रह्म की ओर अभिमुख हूं। कैसे? तो देखिए कि ब्रह्म की ओर अभिमुख होने के लिए जो पुत्र है ना वो भी साधन है। उपनिषद में कहा पुत्रेण जय्यो अयम लोकः, इस लोक के ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो पुत्र के द्वारा कर सकते हैं। पितृदि लोक है उनके ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है तो कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, और देवलोक के ऊपर विजय प्राप्त करनी, विजय यानी उनका लाभ लेना, वहां जाना है तो उपासना करनी चाहिए। अब पुत्र से अभिप्राय है गृहस्थाश्रम, मेरा जो गृहस्थाश्रम है यानी गृहस्थाश्रम में जो मैं कर्म कर रहा हूं उनका एकमात्र उद्देश्य ये सांसारिक लाभ नहीं किंतु ब्रह्म लाभ हो। इसलिए हमारी ये जो संस्कृति बड़ी दिव्य है, जो भी हमारे यहां कर्म है उपासना है उन सब का तात्पर्य एकमात्र ब्रह्म है। इसलिए गृहस्थाश्रम कर्म प्रधान है, तो कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं जो भी करूं वो ब्रह्म के लिए करूं, यानी मेरा जो गृहस्थाश्रम है वो तदनुकूल बने, मैं जो भी गृहस्थाश्रम में कर्म करता हूं वो उनके अनुकूल हो। इसलिए सबसे पहले कहा कि व्यक्ति को निष्काम कर्म करना चाहिए, तब जाकर के वो इसी मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसलिए कर्मेंद्रिया जो है वो इस और अभिमुख हो ये आवश्यक है। ठीक है, केवल कर्मेंद्रिय नहीं, और आगे कहा कि प्राण प्राण मम प्राण आप्यायन्तु, ऐसा वाक्य बनाइए, मेरा जो प्राण है वो भी आप्यायन्तु यानी ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो हो जाए, वृद्धि को प्राप्त होवे। यानी मैं उपनिषद का अध्ययन करने जब बैठू तो मेरा जो प्राण है वो सम रहे, और प्राण से अभिप्राय है अपान व्यान उदान और समान। प्राण शब्द पांचों प्राण वृत्ति का उपलक्षण है, जैसे वो वाक शब्द है कर्मेंद्रिय का उपलक्षण, वैसे प्राण है वो व्यान उदान अपान और समान उन चारों का उपलक्षण हो जाएगा। यानी मेरा जो प्राण है पंचवृत्तिक प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, जिससे ये मेरा शरीर धारण होता। देखो हमारा शरीर धारण करने में प्राण कारण है, प्राण न हो तो हमारा शरीर वो धारण ही नहीं हो पाएगा, उनकी स्थिति ही नहीं हो पाएगी। कभी सोचा हम जब भोजन करते हैं तो हाथ से उठा करके मुख में रखते हैं और फिर जमा कहां होता? पेट में। देखो मुख से लेकर यहां तक बीच में कितना फासला, दूरी है कि नहीं? तो अंदर हम हाथ से अंदर डालते हैं क्या? नहीं, हाथ से तो केवल मुख तक ही ले जा सकते, मुख में रख सकते हैं, किंतु मुख से अंदर यहां पेट तक जाता है वो कौन ले जाता? वो अपान वायु ले जाता है, अपान वायु नीचे की ओर भोजन को ले जाता है। यदि वो प्रक्रिया जो है वो कुछ गड़बड़ा जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा? नहीं रहेगा। पांचों प्राण की जो क्रिया है वो यदि बाधित हो जाए तो समझिए कि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, और स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या वेदांत विचार होगा? क्योंकि वेदांत विचार के लिए स्थिरता चाहिए, स्वस्थता चाहिए। यदि स्वस्थता नहीं है तो हम स्थिर चित्त से विचार नहीं कर पाएंगे, चित्त व्यग्र रहेगा, और कहा जो यज्ञरचित अवस्था में कोई भी कार्य किया जाता है तो वो सफल नहीं होता। यदि आप जप करने के लिए बैठे और चित्त व्यग्र है तो कहा व्यग्र चित्तो हतः जप। व्यग्र चित्त अवस्था में किया गया जप है वो हत नष्ट हो जाता। नष्ट होने का अभिप्राय है उस समय हो ही नहीं पाएगा, वही उनका नाश है। मैं तो आप कहेंगे अरे नाश हो जाएगा तो करेंगे तो फिर तो बेकार ही है। अरे नाश होने का अभिप्राय है कि व्यग्रचित अवस्था में आप ढंग से जप कर ही नहीं पाएंगे। ढंग से जप न करना ये क्या हुआ, वो जप का नाश हुआ। इसलिए जप करने के लिए भी चित्त क्या चाहिए, स्थिर चाहिए। और चित्त स्थिर, शरीर स्वस्थ हो तभी संभव है। देखो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और शरीर तब स्वस्थ होगा कि प्राणापान आदि जो समग्र क्रिया है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ चले। प्राण का अपना कार्य जो है निर्बाध गति से हो, अपान का कार्य वो निर्बाध गति से हो, उदान का कार्य व्यान और समान का जो कार्य है वो निर्बाध गति से हो। अभिप्राय है शरीर की स्वस्थता। शरीर स्वस्थ हो और फिर चक्षुरादि इंद्रिया भी स्वस्थ हो। और देखो इसलिए चक्षु से ज्ञान इंद्रिया ले लेनी है। चक्षु श्रोत्रम वो दोनों ग्रहण किया, ये भी जो है अन्य तीन जो ज्ञान इंद्रिया उनका उपलक्षण है। अब देखिए ज्ञान इंद्रियों में चक्षु और श्रोत्र दोनों प्रधान है इसलिए दोनों का नाम लिया। कर्मेंद्रियों में वाक प्रधान है इसलिए केवल वाक का नाम लिया। प्राण में जो मुख्य वृत्ति प्राण है वो प्रधान है इसलिए केवल प्राण का नाम लिया। किंतु ज्ञानेन्द्रियों में चक्षु और श्रोत्र दोनों बराबर के प्रधान है इसलिए दोनों का नाम ले लिया। चक्षु श्रोत्रम वो इतर जो तीन ज्ञानेन्द्रिय उनका उपलक्षण है उसके साथ भी लगाए। आप्यायन्तु ब्रह्म ध्यान के अनुकूल वो वृद्धि को प्राप्त हो उसी की ओर लगे। और आगे भी सर्वाणि इंद्रियाणि कह करके प्राण पंचक को भी ग्रहण कर लेना है। तो इस तरह से जो पूरा सूक्ष्म शरीर यहां पर ग्रहण हो गया वो जो है सुचारू रूप से चलेगा तभी वेदांत का स्वाध्याय का विचार हो पाएगा। स्वाध्याय में प्रवेश हो इसलिए शरीर की प्राण की इंद्रियों की और सारी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया की स्थिरता इसमें मांगी गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।